نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह से नमाज़ पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ता देखते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे सामने हर दिन आती है और हम उस वक्त ये नियत करते हैं कि हम एक बार फिर अपने आप को चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारी नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह है और क्या वाकई हम अपनी ज़िंदगी में इबादत के नाम पे भी जो काम करते हैं वो सही करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज़े बाजमात के मुतफर्रिक मसाइल। हम बाजमात नमाज़ पढ़ते जा रहे हैं यानी उसके बारे में मसाइल है। बुक जो मेरे सामने इसका पेज नंबर 135 है। तो आज आपको बहुत कुछ मिलेगा, ख़ास तौर पर जमात की नमाज़। और जैसा कि बात हुई कि ख़वातीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहनों में, नमाज औरत की कैसे क्या, तो पढ़ते हैं नमाज़े बाजमात के मुतफरिक मसाइल यानी कुछ ऐसे जिनको अलग अलग से भी एक टॉपिक देना मुमकिन नहीं था तो उनको फिर एक ही टॉपिक के अंदर लिया गया। तो पहली चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इज़ा उकीमतिस सलातु व वजदा अहदुकुमुल खला फल यब्दा बिल खला। जब जमात के लिए इकामत कह दी जाए और किसी शख्स को पेशाब वगैरह की हाजत हो तो पहले इससे फरागत हासिल कर ले फिर नमाज पढ़े। मुराद क्या है कि जब जिस्म में किसी और चीज़ की हाजत हो, तलब हो, अगर उस वक्त आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका ध्यान नमाज में नहीं होगा। और ये रिवायत तिर्मिज़ी की 142 और अबू दाऊद की 88 है और इसी तरह और भी रेफरेंसेस हैं। मेरा सवाल है कि ये उज़र क्या है कि तवज्जो नमाज में हो और अगर कोई इस हाजत के बग़ैर भी नमाज पढ़े तो उसको पता ही नहीं कि वो पढ़ क्या रहा है। तो पहली बात क्या पता चली कि नमाज में पूरा ध्यान होना चाहिए, तवज्जो के साथ नमाज पढ़िए, सुकून के साथ नमाज पढ़िए। ये ऐसी है कि जैसे आप किसी से बात करें और जल्दी जल्दी बोलें, तेज तेज बोलें, कैसा लगेगा अगले को? ऐसा लगेगा कि आपकी टोन उसके जहन से या उसके सोचने की रफ्तार से बहुत तेज है, एग्रेसिव हो जाएगा, सुनना छोड़ देगा, कान बंद कर लेगा। आप जितना जल्दी में ज्यादा सुनाना चाहते नहीं होगा, खाना खा रहे हैं और खाएं जल्दी खा लूं, ये खा लूं, नहीं, आप जितना जल्दी खाएंगे ना आपको दो चार नवालों के बाद सांस फूलता हुआ महसूस होगा, आप खा नहीं सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह नमाज आपकी मेरी रूहानी जरूरत है, स्पिरिचुअल फूड फॉर आवर बॉडी। आप खाना तेजी से खाएंगे तो क्या होगा, और खाना खाने से पहले ही अगर पेट भरा हो तो कैसे खाना और खाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस्म की ज़रूरियात से फारिग होकर नमाज पढ़ना ये इस बात की दलील है कि हम नमाज में अल्लाह ताला से बातचीत बड़े पुरसकून माहौल में करना चाहते हैं। तो बच्चों को भी ये शुरू से आदत डालिए। कई लोग आप देखिए कि जाए नमाज उठ के फ़ौरन वॉशरूम में भागते हैं, बेहतर है कि पहले फारिग हो जाए, कोई अचानक तो नहीं आती नमाज। और यहाँ एक बात अपनी सिस्टर्स को कहूँगी कि अपने खाने के औकात यानी आपने लंच किस वक्त करना है, डिनर किस वक्त करना है, इसको नमाजों के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि या तो खाना खाने में नमाज ना चली जाए या खाना खाया तो आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नमाज ना चली जाए। एटलीस्ट हमारी फूड सर्विंग और नेक्स्ट सलाद के बीच में एक घंटे का टाइम होना चाहिए ताकि लोग खाकर फारिग होकर रिलैक्स होकर फिर नमाज अदा कर सके। ठीक है, फिर अगली बात क्या है कि आपने फरमाया जो शख्स अजान सुनकर मस्जिद में जमात के लिए ना पहुंचे और घर में नमाज पढ़ ले इससे इस नमाज कबूल नहीं की जाती इल्ला ये कि कोई उज़र हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। पहले तो आप इसका रेफरेंस नोट करें, इतनी बड़ी बात है। तो इब्ने माजा की रिवायत है 793 और इब्ने हब्बान की रिवायत है 426 और हाकिम की रिवायत है 245 और इसी तरह और रेफरेंसेस भी है। अब थोड़ा सा इस हदीस पे बात करते हैं। अजान सुनी और निकले नहीं, घर से नहीं गए, बैठे रहे घर में ही पढ़ी, नमाज ही नहीं कबूल होती। अब उज़र क्या है ये अब आप मैं खुद जाने। देखिए ये हुक्म मर्दों के लिए, पहली बात है अल्लाह ने मर्दों को मुकल्लफ किया है। आप वैसे भी देखिए कमाने खाने के लिए भी मर्द ही बाहर जाता है, बाहर के काम मर्द की जिम्मेदारी, औरत के नहीं। ये तो आज की औरत ने अपने ऊपर इनको डालकर बहुत ही बड़ा एहसान किया मर्दों पे, वरना काम तो मर्दों के थे। पर वो कहते हैं कि हम क्यों करें, आपको पसंद नहीं आती हमारी चीज़ें, शॉपिंग से लेके और बहुत सारी चीज़ें खवातीन पे डल गई। चलिए नमाज के बारे में क्या, किसी भी काम के लिए ना कोई निकले लेकिन नमाज के लिए उसको निकलना होगा। अगर बचपन में ये हदीस आप अपने बच्चों को सिखा दें, 8-9 साल के बेटे को, सच बताइए ये इल्ला के बाद के लफ्ज़ ना अगर होते और बात यहाँ रुक जाए कि जो जान सुनकर बाहर ना गया, मस्जिद में ना गया, उसकी कबूल ही नहीं, क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने अपने नबी के जरिए आगे उजर की बात करके लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अब इस दौर तक पहुँचते पहुँचते, यानी नबी सल्लम के 1400+ कुछ ईयर्स के बाद, हम मुसलमान अब यहाँ तक भी आ गए हैं। फ़र्ज तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं, क्या फ़र्क है? और अगले सालों में जो आवाज़ें अभी भी आने लग गई, ये तो बहुत ही रिजिडिटी है कि मस्जिद में जाके पढ़ो, इट्स टू मच, टाइम ही नहीं। हर काम के लिए गाड़ी निकलेगी, अब दिन में 5 दफ़ा अगर नमाज के लिए निकली तो कमाएंगे कैसे? तो पूछिए ज़रा अब्दुलरहमान बिन औफ से कैसे कमाते थे, और पूछिए अबू बकर सिद्दीक से कैसे कमाते थे। आज की ज़ुबान में करोड़पति लोग थे। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है। आप क्या सोचते हैं कि आप कमाई करने जाते हैं तो ज़्यादा मिलेगा? मिल जाता होगा आपको, एक एक डील में आपको लाखों बचता होगा। लेकिन नमाजी मस्जिद में आकर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, उससे बड़ा बिलियनेरियन है। एक बहुत प्यारा पावर पॉइंट था कि बिलियनेरियंस कौन, तो उसमें दुनिया के सब मुख्तलिफ चंद लोगों के नाम और बायोग्राफिक थी कि ये फलां फलां, जैसे होते हैं बिल गेट वगैरह, इस तरह की पर्सनैलिटीज। और नंबर वन वो है जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, खैरु मिन दुनिया व मा फीहा। तो देखिए ये हम माओं की जिम्मेदारी है, बहनों की और बीवियों की, हर रिश्ते में एक औरत मर्द को असिस्ट करे जमात की नमाज के लिए। करना कैसे है ये अब आप जानते हैं खुद, हमें खूब मनाना आता है। शॉपिंग पे लेके जाना है तो कैसे, और मैके जाना है तो कैसे? तो मोहब्बत की बात करिए, जज्बात की बात कीजिए, लाड करें। कोई कहता है मामा दिखाएं किधर फर्ज है, बेटा मैं कह रही हूँ माँ की खुशी है। पर मसला क्या कि माएँ भी कॉम्प्रोमाइजिंग है, हाँ बेचारा चल के कैसे जाएगा, आए थका हुआ आया उठाऊँ। ये हम औरतें हैं जिन्होंने अमूमन मर्दों को रिलैक्स किया हुआ। कोई नहीं कहता गुस्सा करें, प्यार करें, अच्छे तरीके से उनको इसकी तैयारी कराएं। तो बहरहाल मर्द की जमात मस्जिद में, यही तो इस्लामिक ब्रदरहुड था जो आज हमारा टूटता हुआ दिखता है। फिर अगली रिवायत लीजिए, जिस जगह 3 आदमी हों और वो जमात से नमाज ना पढ़ें तो शैतान इन पर गालिब होता है। कितनी बड़ी बात है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 547। और शैतान जिन पर गालिब होगा वो क्या कराएगा? अब यहाँ से ये नहीं मतलब कि आज जमात सिर्फ 3 आदमियों की होती है, 2 की भी हो जाती है। किसी जंगल में गया हुआ कोई एक ही है ना, अकेला भी अल्लाह अकबर करके ऊंची आवाज से पढ़ेगा, उसकी भी हो जाएगी। अल्लाह अपनी मखलूकात को भेज देता है उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन बहरहाल बात बड़ी वाजे है, मैं इस पर क्या और बात कहूँ। फिर अगली हदीस लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर शाम का खाना सामने लगा दिया जाए और नमाज की इकामत हो जाए तो पहले खाना खाओ, और खाना खाने में जल्दी ना करो यहाँ तक कि खाने से फारिग हो जाओ। नोट कीजिएगा, खाना खाओ और खाना खाने में जल्दी ना करो, ठीक है? फिर अगली बात देखिएगा, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खाना रख दिया जाता और जमात भी खड़ी हो जाती तो इस वक्त तक नमाज के लिए ना जाते जब तक के खाने से फारिग ना हो जाते, हालांकि वो इमाम की किरत भी सुन रहे होते थे। जी बिल्कुल, बुखारी की रिवायत है 559। अब इन दोनों को जमा कीजिए, आपने रखा खाना या किसी ने आपके सामने रखा है। मसलन मगरिब का वक्त है और खाना रख दिया शादी में आपके सामने, क्या खाना खिलाने वाले मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके आगे रखा मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब का वक्त अचानक तो नहीं आया, नहीं तो फिर ये मुस्लिम कल्चर है। ये वंस ऑफ आयल की जो बात हदीस में आ जाती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कभी फिट हैपेंस तो खाना खा लीजिए। जैसे ऊपर बात है ना कि वॉशरूम में जाने की हाजत है तो वेट कीजिए, कर लीजिए फारिग हो जाए अपने आप को ताकि नमाज अच्छी हो। सेम थिंग है, खाने की खुशबू आ रही है, खाना रखा हुआ है तो ध्यान उधर जाएगा। और ख़ास तौर पर ये ईशा की बात है, ये भी नोट करें, मगरिब की नहीं है। ईशा और अशा इकट्ठा हो तो फिर पहले खाना खा लो। मुराद यह कि ईशा के वक्त में वुस्सत होती है, ये नहीं कि आप मगरिब की नमाज कजा करके खाना खाते रहे। फिर अगली रिवायत लीजिए, शदीद सर्दी और बारिश की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। जी बिल्कुल, बुखारी की रिवायत 666। इतनी मारूफ रिवायत, लेकिन हमारे कल्चर में लोगों को ये नहीं पता। बहुत सर्दी है, माइनस में है, स्नोइंग है, बारिश हो रही है, घर में पढ़ सकते हैं। बल्कि उसके लिए लफ्ज़ भी हैं, पीछे भी बताए थे आपको कि सल्लुफी रेहालिकुम, अपने घरों में पढ़ लो। तो हमारा दीन कोई मजबूर करने वाला दीन नहीं, या उसको कोई हमसे दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, वक्त और हालात है। अभी सारा पढ़ ले, फिर इस पर इंशाल्लाह एक नोट लेते हैं। सफ़ों में मिलकर खड़ा होने का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवु सुफूफकुम इन्न तस्वीयत सुफूफी मिन इकामत सलाह। अपनी सफ़ों को बराबर करो, क्योंकि सफ़ों का बराबर करना नमाज का कायम करना है। जी, अब आप देखिए कि नमाज का कायम करना है, ये बुखारी की रिवायत 723 है। आपने कई दफ़ा इमाम सुदेस की ज़ुबान से ये जुमले सुने होंगे, और अक्सर लोगों को नहीं पता होते तो वो पूछते हैं, तो आज आपके सामने लफ्ज़ भी मौजूद हैं। फिर इसी तरह अपनी सफ़ों को बराबर करो, क्योंकि सफ़ों का बराबर करना नमाज कायम करना है, यानी सफ़ सीधी होगी तो ही नमाज कायम होगी। कुरान पाक में क्या है, वाकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, ये कहाँ लिखे है कुरान पाक में, बकरा 43। तो सफ़ सीधी होनी चाहिए, सफ़ टेढ़ी हुई ना तो दिल टेढ़े होने लग जाते हैं। जो टेढ़ी सफ़ों के साथ नमाज पढ़ेगा, गोया कि उसकी नमाज पूरी कायम नहीं हुई। मुराद क्या है अकीमुस्सला से, हम बोलते हैं नमाज कायम करो, ये नहीं कहते नमाज पढ़ो। तो मुराद क्या है, अरकान और सुन्नतें, यानी अरकान और सुनन का एहतमाम करते हुए और इनका लिहाज रखते हुए नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफ़ों को सीधा करना भी नमाज कायम करने में शामिल है। इससे मालूम हुआ कि सफ़ों का टेढ़ा होना नुकसान का मूजिब है, यानी सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों को सीधा करो, क्योंकि सफ़ को सीधा करना नमाज के हुसन में है। ये बुखारी 722 है। सच बताइए, हरम के इर्द गिर्द की सफ़ें लगता है ना कंपस से दायरे खींचे हुए, एक शख्स सिर्फ इस मंजर को देख के मुसलमान होता हुआ दिखता है, जब उसने बिखरे हुए हजूम को सिर्फ एक इकामत के बाद सीधी सफ़ों में बदलते हुए देखा। हमारा दीन तो इतना प्यारा था, इसकी तो सफ बंदी दूसरों के दिलों में इस्लाम की धाक डाल देती थी। आज हम थोड़े बिखरे बिखरे हैं, अल्लाह हमें सीधा कर दे। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को इस तरह बराबर करते, गोया इनके साथ तीरों को बराबर करते हों, यानी जब तीर चलाना होता है ना तो उसको पहले हाथ से सीधा करते हैं। कभी आपने तिंकों वाली को डोर देखी हो, या पतंग जो होती है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि इससे क्या मुराद है। यहाँ तक कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ों का सीधा करना समझ लिया। एक दिन आप जमात के लिए खड़े हुए, तसव्वुर में ले आया करें क्या हुआ होगा, और तकबीर कहने को थे कि एक शख्स को देखा कि इसका सीना सफ से बाहर निकला हुआ है, यानी बाकी लोगों की निस्बत थोड़ा सा आगे खड़ा है। तो फरमाया, अपनी सफ़ों को बराबर और सीधा करो, वरना अल्लाह ताला तुम में इख्तलाफ डाल देगा। सुभान अल्लाह, आप देखिए कि अल्लाह के नबी की बातें कितनी अच्छी। आज है उम्मत में इख्तलाफ, इख्तलाफ नहीं इख्तलाफात है। जी, और ये रिवायत है ना, ये सही मुस्लिम की 436 है। क्या पता चला, सफ़ों को सीधा करना चाहिए। इकामत हो जाने के बाद जब सफ़े सीधी दुरुस्त और बराबर हो जाएं, फिर इमाम को तकबीरे उला कहनी चाहिए, यानी जब तक सफ़े सीधी ना हो तकबीर नहीं कहनी चाहिए, उससे पहले कोशिश करनी चाहिए कि लोग सीधे खड़े हों। आपने फरमाया, खबरदार सफ़े टेढ़ी ना हों, कि सफ़ों का टेढ़ा होनपन बाहमी फूट, दिलों के इख्तलाफ और बातनी कदूरत का मूजिब है। कदूरत क्या होती है, एनिमिटी, किसी के लिए ऐसी दुश्मनी दिल में पाल लेना, बातनी मीन अंदर की। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों में खूब मिलकर खड़े हुआ करो, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाओ, और सफ़ों को करीब करीब बनाओ, दो सफ़ों के दरमियान ज़्यादा फासला ना छोड़ो, और गर्दने बराबर एक दूसरे की सीध में रखो। कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं शैतान को देखता हूँ कि खाली जगहों में तुम्हारी सफ़ों में घुस आता है, जैसे वो बकरी का बच्चा हो। जी, यानी शैतान ख्वाहिश करता है कि दो लोगों के बीच में आ जाए, कभी कभी बकरी के बच्चे की सूरत में भी आता है, ये मुराद है। ابو داؤد کی روایت ہے 667 اور ابن حبان 387 اور ابن خزیمہ 1545. مراد یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرتے وہ رخ نہ ڈالے. حضرت نعمان بن بشیر سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی طرف پہلے اپنے رخ کیا، پھر فرمایا لوگ اپنی صفیں برابر کرو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر اور جوڑ کر کھڑا ہوتا تھا. جی، ابو داؤد کی روایت ہے 662 اور ابن حبان میں 396، نسائی میں 287 اور ابن خزیمہ میں 160 اور دار قطنی میں 283. اب آپ دیکھیے اتنے ریفرنس کیوں لکھا رہے ہیں، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بولنے کی. اب آپ ذرا سا صحابہ کا عمل تو دیکھیے، اتنے جڑ کے کہ بیچ میں ذرا سی بھی جگہ نہ ہو. آج صف بندی پہ کئی فرقے بن گئے ہمارے تو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. بس لڑنے کو تیار، دوسرے کو جنت سے نکال کر خود اس کی جگہ پہ رہنے کو تیار. یہ مسلم ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ مسلم بیہیویئر نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پسے پشت بھی دیکھتا ہوں. کیسے؟ معجزہ تھا. اللہ اپنے نبی کو جو بھی معجزہ دے، ہمیں تو پیچھے سے نہیں دکھتا، اللہ کے نبی کو دکھتا تھا جب اللہ دکھانا چاہتا. حضرت انس کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا. اب آپ کو تو یہ باتیں بالکل عام لگے گی، لیکن مسجدوں میں جھگڑے ہیں ان باتوں پہ. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. اور یہ روایت قدم سے قدم، بخاری کی روایت ہے 725. اور آپ دیکھیے ایک سے ایک صحیح روایت ہے، لیکن صرف آج آپ لڑنے کی خاطر یا صرف اپنے آپ کو کسی ایک سکول آف تھاٹ سے ثابت کرنے کی خاطر ان چیزوں کا انکار کریں تو اپنی ذمہ داری ہے. آپ کو مجھے بالکل بھی کسی کے ساتھ کوئی غصہ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ کوئی اپنے لیے کرے وہ اس کا مجاز ہے، کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا. کیا سمجھ آیا؟ حالت نماز میں قبلہ رخ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے نمازیوں پر نظر رکھنا، واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور یہ حالت نماز کے ساتھ خاص تھا. مگر نماز میں بھی یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایسا ہو جاتا تھا اور جب نہیں چاہتا تھا نہیں ہوتا تھا. صحیح حدیث میں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب سمے اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی، ربنا ولک الحمد ولک الحمد حمدن کثیرا. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، من المتکلم، دعا کس نے پڑھی تھی؟ یعنی آپ کو نہیں پتا چلا کس نے پڑھی تھی. اگر آپ کو سب دکھ رہا ہوتا تو آپ یہ تکلف کیوں کرتے؟ اور یہ بخاری کی روایت ہے 799. کیا پتا چلا؟ جب اللہ چاہتا بتاتا. دیکھیے بچوں کو تو ویسے مڑ مڑ کے عادت ہوتی ہے، اگر آپ 7 8 9 سال کے کسی بچے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ مڑ کے پچھلی صفوں کو دیکھے گا، پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، وہ سجدے میں سے بھی نیچے سے منہ نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں، دوسری بات دیکھیے کہ انسان کو اپنی فیلنگ سے بھی دکھتا ہے. جیسے میں نے کچھ لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے بلائنڈ، کوئی ان کے پاس ان کو فوراً پتہ چلتا ہے، کوئی ویوس ہوتی ہیں یا ان کو کوئی سانس کی آواز آتی ہے، اللہ نوز دی بس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جو صلاحیت دے دے، اللہ کے نبی کو اللہ نے خاص صلاحیتیں دی ہوئی تھی، تو اگر اس میں سے کبھی آپ کو پتہ لگ جاتا تو ٹھیک تھا، ہر وقت نہیں لگتا تھا، یہ مراد ہے. ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑی. آپ نے بقیع الغرقت، یعنی مدینہ منورہ کا جو مشہور قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں لوگ، وہاں پہنچ کر دعائے مغفرت کی اور واپس آ گئے. حضرت عائشہ آپ سے پہلے اپنے بستر پر پہنچ گئیں، لیکن ان کی سانس پھولی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو حضرت عائشہ نے ٹالنا چاہا. آپ نے فرما دیا، عائشہ بتا دو ورنہ میرا اللہ مجھے بتا دے گا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ساری بات بتا دی. یہ مسلم کی روایت ہے 974. کیا پتا چلا؟ کہ گھر سے نکلتے وقت حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر اور کیوں جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ عائشہ بھی میرے پیچھے آ رہی ہیں. یعنی اگر تو آپ ایک انیوژل انسان ہوتے اور ہر وقت آپ کو شیشے کی طرح پیچھے بھی دکھتا، آنکھوں کے ساتھ جیسے آگے دکھتا ہے، تو پھر یہ تو نہ ہوتا. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ جب جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے، جو حکم بتا دیتے وہ آپ کو پتہ لگ جاتا، और ना पता लगता तो नहीं पता लगता। तो इतनी बात का खुलासा क्या है कि सफ़े अच्छी तरह बनानी चाहिए। कुछ और बातें सफ़ बंदी के बारे में। बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में दाखिल होकर एक जानिब से दूसरी जानिब तक चलते, यानी दो सफ़ों के बीच में चलते, ये मुराद है। हमारे सीने और कंधों को बराबर करते, यानी ज़रा सा जो आगे होता उसको हाथ से पीछे करते, कोई पीछे होता तो उसको आगे करते कंधों से पकड़कर, और फरमाते आगे पीछे मत होना वरना तुम्हारे दिल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। और फरमाते थे तहकीक अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। क्या पता चला, पहली सफ में खड़ा होना चाहिए, फरिश्तों की रहमतें और उनकी दुआएं लेनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वैसे भी अच्छा नहीं लगता, गैर मुहज्जब है ना। आज देखिए कि वेस्ट में और मॉडर्न वर्ल्ड में लाइने बनाने, रोज बनाने, कतारों में रहने को कितनी अहमियत देते हैं। और आजकल जो क्यू का तसव्वुर है लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सिलसिले में, सब के लिए नोन है। बेहंगम लगते हैं लोग इधर उधर बिखरे हुए। हमारी तो लाइन भी हो तो पता नहीं चलता, एक लाइन है कि दो तीन चल रही हैं। तो नमाज में रोब डलता है। अल्लाह के नबी और असहाबे रसूल के दौर में आप देखिए तो कई लोग सिर्फ नमाज पढ़ता देकर मुसलमानों को इस्लाम से मुतासिर हो जाते थे और फिर थोड़ी सी बातचीत के बाद कलमा पढ़ लेते थे। तो वाकई ये बात सच है कि सफ़े सीधी तो दिल सीधे, और दिल सीधे तो मोहब्बत ही होगी। मोहब्बत फातहे आलम। और इस नुमान बिन बशीर ही से ये बात भी आप देख रहे हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो आप हमारी सफ़े बराबर करते, जब सफ़े बराबर हो जाती फिर अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज शुरू करते। ये अबू दाऊद की रिवायत है 665। तो इमाम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक और रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़े दुरुस्त करो, कंधे बराबर करो, सफ़ों के अंदर यानी दरमियान में फासला ना रहने दो, अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ। ये क्या मुराद है? बाज़ लोगों को ज़रा सा सफ़ मिलाने के लिए आगे पीछे करें तो वो पत्थर के पत्थर होते हैं, हिलते नहीं। हालांकि आपको तो बेहतरीन कदम सफ़ मिलाने के लिए हैं, आगे उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर देखिए, अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ, सफ़ों के अंदर शैतान के लिए खला ना छोड़ो, और जो शख्स सफ़ मिलाएगा अल्लाह भी इसे अपनी रहमत से मिलाएगा, और जो इसे काटेगा अल्लाह ताला भी इसे अपनी रहमत से काट देगा। ये अबू दाऊद की रवायत है 665। हाकिम और ज़ाहबी ने मुस्तदरक में 213 में, और इब्ने खुज़ैमा ने 1549, और इमाम नववी ने अल मजमू में 227 जिल्द 4 में कही कि ये सही बात है। मुराद ये कि सफ़ों को मिलाने वालों को, मतलब रिश्ते नातों को मिलाने का हुक्म है, और जो सफ़ तोड़ेगा काटेगा अल्लाह फिर उसको अपनी रहमत से काट देगा। अब यहाँ थोड़ी सी वजाहत है कि भाइयों के हाथों में नरम होने का मतलब ये है कि अगर सफ़ दुरुस्त करने के लिए कोई तुम्हें आगे या पीछे करे तो बड़ी नरमी और मोहब्बत से आगे या पीछे हो जाओ जी। अगर सफ़ से कोई निकल कर चला जाए तो इसकी जगह लेकर सफ़ मिलाओ, तुम पर रहमत करेगा अल्लाह ताला। सफ़ के अंदर जानबूझकर एक दूसरे से दूर खड़े होना सफ़ काटना है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर करेगा, वलैयाज़ु बिल्ला। सफ़ों की तर्तीब, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले पहली सफ़ को पूरा करो, फिर इसे जो पहली सफ़ के बाद हो, यानी अगली सफ़ पूरी करनी चाहिए फिर दूसरी शुरू करें। यह अबू दाऊद की रिवायत है 671। बस लोगों ने जगह रखी होती है, नहीं मैंने इधर ही खड़े होना है, मेरा ये ठीक है मैं इधर खड़ी होंगी, अब अगली सफ़ में जगह और आप पिछली सफ़ के शुरू में खड़े होते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। और ये रिवायत इब्ने खुज़ैमा ने 1546-47 और इसी तरह और भी रिवायतों में दुरुस्त रिवायत है। मुराद ये है कि पहली सफ़ को पूरा करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों की सफ़ों में सवाब के लिहाज से सबसे बेहतर पहली सफ़ है। कौन जाएगा पहली सफ़ में? जो वक्त पे आएगा, जो पहले से बैठा हुआ है। और सबसे बुरी आखिरी सफ़ है। क्यों बोला? लेट कमर्स, lastminute.com। और औरतों की सफ़ों में सबसे बुरी पहली सफ़ है और सबसे बेहतर आखिरी सफ़ है। ये क्यों है ना? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी तो है ही नहीं। नहीं, बात तो बुरी सुनिए। पहले तो रिवायत लीजिए, ये सही मुस्लिम की रिवायत थी 440। दूसरी बात देखिए कि मर्दों की सफ़ें आगे से बनना शुरू होती हैं, और ये कब होता था और अभी भी हो सकता है? जब एक ही बड़ा हॉल है, ये खुले मैदान में है और मर्द औरतें नमाज पढ़ रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए लेडीज प्रेइंग एरियाज हैं, उसमें तो वही रूल होगा जो कि मर्दों के लिए है کہ صف شروع سے بندی شروع کرے گی، پہلی صف پوری کریں گے پھر دوسری ہوگی، لیکن ایسی صورت جس میں عورتوں کو اور مردوں کو ایک ہی کھلی جگہ پہ پڑھنی ہے، تو عورتوں کو سب سے پیچھے بیک آف دی ہال، جب بیک آف دی پلیس شروع کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے جب سب سے پیچھے ہوگی وہ پہلے بنے گی نا، اور آخر میں پھر آگے آگے ہوتے جائیں گے. مراد اس میں یہی ہے کہ نماز میں وقت پہ آنا چاہیے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ترتیب اس وقت ہے جب خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑے ہوں اور ان کے متصل یعنی ملی ہوئی بعد خواتین کھڑی ہوں تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف جائے گا، لیکن اگر مرد پہلی صفوں میں ہوں اور خواتین آخری صفوں میں ہوں جبکہ درمیان میں بچے ہوں تو پھر ایسا امکان نہیں رہے گا. یعنی یہ فرق اختلاط یعنی مکسنگ سے بچنے کا بھی ہے، جس کو آپ مکس گیدرنگز کے نام پہ یا کو ایجوکیشن کے نام پہ سمجھتے ہیں، یہاں عبادت کے نام پہ بھی مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، نماز میں توجہ بھٹکے گی. اور المجموع 301 یہ کتاب کا نام ہے جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا. یہ جی روایت ہے صحیح مسلم کی 438. تو بات واضح ہے، ظاہر ہے کہ جتنا آپ دین کو پیچھے ڈالیں گے آپ کو اللہ اتنا اپنی رحمت سے پیچھے کر دے گا. یہ تو وہی ہے کہ جو آئے گا وہ پائے گا، من جد وجد. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ نماز کے لیے مسجد میں آ جائے. اب صف بن رہی ہے، بیچ میں ستون آ گیا، پلر آ گیا، کوئی آبسٹیکل آتا ہے، تو اس کو صف میں کیسے میک اپ کیا جائے گا؟ اس کی دلیل سن لیجئے. ستونوں کے درمیان صف بنانا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بچتے تھے، یعنی ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے. اور یہ روایت پہلے نوٹ کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے 673 اور ترمذی 229، امام حاکم نے اس کو 218 پہ لیا. اب اس سے مراد کیا ہے کہ صف بناتے وقت اس طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ صف بنے کہ بیچ میں کوئی ستون نہ آئے. اب دیکھیے کہ صف جہاں بن رہی ہوتی ہے نا، جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگر ادھر ستون ہوگا نا تو مشکل ہوگی. آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور سجدے کی جگہ پہ یا دوسری صف کے شروع ہونے سے پہلے یعنی بالکل آخری سرے پہ ستون آ جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. تو مراد یہ ہے کہ ستون کو ایوائڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی صف بنی بھی اور آپ اکیلے ہیں، کیا کریں؟ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا. اب دیکھیے یہ باتیں ذرا ساری آرام سے سمجھیے. بعض دفعہ اس پہ جلد بازی میں فتوے بھی دے آتے ہیں لوگ، اور دوسری طرف حد جا کے کیئر ہی نہیں کرتے. یہ روایت 682 ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا سا آگے ایک دور حدیث سمجھے، اور ایک چھوٹا سا اپنے لیے اصول لکھیے، صرف ایک حدیث سے کوئی ایک مسئلہ نہ ثابت کیا کریں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کچھ ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ پھر کامنلی وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اگر اگلی صف میں جگہ نہیں تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استنباط. استنباط کیا ہوتا ہے؟ نبتہ، کنویں میں سے پانی نکالنا. قرآن میں کدھر ہے؟ یستنبتون، سورت نساء میں آتا ہے. استنباط ہوتا ہے گہرائی سے جا کر پانی لینا. تو یہ مراد ہے کہ ایکسٹریکٹ کرنا، مسئلے کو اخذ کرنا. اب اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے، اگلی صف سے آدمی کھینچ کر صف بنا لے تو جائز ہے. اگر اگلی صف سے آدمی نہ بھی کھینچا جائے اور اکیلے ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور یہی طریقہ بہتر ہے. بات سمجھ ہے؟ بس آپ دیکھیے کہ ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ امام کی رائٹ سائڈ پہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا. ایک اور آ گیا، اب غور سے سننے والی بات ہے ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. پہلے ایک ہی تھا پڑھنے والا تو امام نے اس کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کیا، تھوڑی لیٹ ہوا تو ایک اور آ گیا جو بیچارہ دیر سے گھر سے نکلا تھا. اب جو دوسرا آئے گا نا اس کو کیا چاہیے؟ اگلا بندہ جو امام کے ساتھ پڑھے نا اس کو ہلکے سے کندھے سے کھینچے پیچھے لے آئے، اور یہ دونوں پیچھے صف بنا لیں گے. ٹھیک ہے؟ اب اگلے بندے کو نہیں آنا یا نہیں آتا، پھر پچھلا بندہ اکیلے پڑھ لے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ صف بندی دین کا حصہ ہے. تو کیا پتہ چلا ساری بات میں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا، वो इस वजह से था कि अगली सफ में जगह होने के बावजूद वो आगे शामिल नहीं हुआ था, यानी आगे जगह हो तो फिर आगे आना चाहिए। ये धार्मिक की रिवायत है 1289। फिर दूसरी बात देखिए कि इससे मालूम होता है कि अगर अगली सफ में जगह ना हो और नमाजी अकेले सफ में खड़ा हो जाए तो इसकी नमाज हो जाएगी। और इब्ने तैमिया रहमहुल्ला का भी यही फतवा है, नासरुद्दीन अलबानी साहब का भी, और दूसरे जो मुहक्किकीन हैं यानी रिसर्च करते हैं वो भी यही कहते हैं। इनके फतावा में आप जाके देख भी सकते हैं। अब यहाँ तक सफ की बात जितनी हुई इसको भी समझ लिया आप।